ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय। आप लोगों का क्रम से कौन सा अध्याय चल रहा है और कौन सा श्लोक है जो क्रम चल रहा है आपका? 11वां अध्याय कौन सा श्लोक है? कौन सा श्लोक है नहीं पता तो याद करो। पिछली बार कौन सा श्लोक हुआ था? दो दिन हफ्ते से नहीं हुआ तो भी याद आ रहा है कुछ? याद करो। 11वां अध्याय चल रहा है, कौन सा श्लोक चल रहा है? मैं पहला श्लोक ले रहा हूँ, ठीक है? पहला श्लोक ले रहा हूँ तो मेरे पीछे बोलिए। सबने खोल लिया या खोलना? अभी खोलना बाकी है या खोल लिया सबने? 11वां अध्याय का पहला श्लोक है। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए सब लोग। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा मत अनुग्रहाय मुझ पर कृपा करने के लिए परमं परम गुह्यं गोपनीय अध्यात्म आध्यात्मिक संगीतम नाम से जाना जाने वाला विषयक यत जो त्वया आपके द्वारा उक्तम कहे गए वचः शब्द तेन उससे मोहा मोह अयम यह विगतः हट गया ममो मेरा। मेरे पीछे अनुवाद बोले। अर्जुन ने कहा आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में शुरू के जो शब्द हैं वो क्या हैं? मत अनुग्रहाय यानी मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। ये श्लोक प्रारंभ हो रहा है कहां से? मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। परमं गुह्यं आपने जो कहा है वो कैसा है? परमं गुह्यं ये बहुत सर्वोच्च गोपनीय। गोपनीय का मतलब है सामान्यतया जो बातें नहीं बताई जाती। अर्जुन को भगवान जो बातें बता रहे हैं सामान्यतया वो बातें नहीं बताते हैं क्योंकि भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो मनुष्य की लीला में भगवान ये बातें नहीं बताते हैं कि वे कौन है और उनकी क्या महिमा है। तो भगवान ने अपनी महिमा जो बतलाई है वो परम गोपनीय है। परमं गुह्यं अध्यात्म संगीतम और ये अध्यात्म नाम से ये जाना जाने वाला ये वचन है। आपने जो उपदेश दिया है वो अध्यात्म का उपदेश दिया है, अध्यात्म संगीतम यत् तुर्योक्तम, जो आपके द्वारा कहा गया है, वचः वचन उपदेश, जो आपके द्वारा उपदेश कहा गया है, मोहोयम विगतो मम, ये मेरा मोह है विगत हो गया है, मेरा ये मोह विगत हो गया है। हाँ, कौन सा मोह विगत हो गया है? अर्जुन जो देख रहे थे ना, ये मेरे, हाँ ये मेरे चाचा हैं, ये मामा हैं, भतीजे हैं, साले हैं, जीजा हैं, कितने मतलब रिश्ते अर्जुन को दिखाई दे रहे थे, और अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे। तो मोहो अयम विगतो मम, ये मेरा मोह है विगत हो गया है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं श्रील प्रभुपाद की। इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। ये जो अध्याय है इसमें दिखाया गया है, इसके पहले तो भगवान ने बताया था, लेकिन इस अध्याय में भगवान दिखा रहे हैं। तो इस अध्याय की जो विशेषता है वो ये है कि भगवान केवल कहते नहीं है बल्कि दिखाते भी हैं। ये विशेष है कि कोई व्यक्ति जो है अगर अपने को कहे कि मैं भगवान हूं, है ना, तो आप उसको जो है चुनौती दे सकते हैं कि अगर आप हैं तो दिखाओ आप कैसे भगवान हैं, है ना। तो भगवान ने अपने शरीर में संपूर्ण विश्व दिखाया है, और भी कहा कि जो कुछ भी तुम देखना चाहो वो भी देख लो, भूत भविष्य वर्तमान कि जो है कोई भी बात जो देखना चाहो, किसी भी स्थान की कोई भी बात देखना चाहते हो वो भी देख लो। भगवान ने जो है मतलब इतना अपने को साबित किया है। तो ये अध्याय इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति इस अध्याय में अगर कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहे तो यहाँ पर उसके लिए एक चुनौती है कि अगर आप कहते हो तो कुछ दिखाओ, आपके अंदर अगर कुछ है कोई शक्ति है तो दिखाओ, है ना। तो इसलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है, सब कारणों के कारण, यानी कृष्ण से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। दसवें अध्याय में भगवान ने कहा था अहम सर्वस्य प्रभु, कि सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूं। तो यहां पर भगवान सब कुछ दिखा रहे हैं कि मेरे शरीर में देखो, भगवान के शरीर में ही सब कुछ उत्पन्न होता है और सबका पालन होता है, भगवान के शरीर में ही तो समस्त कारणों के कारण रूप में दिखाया गया है, यहाँ तक कि वे उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी, आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। महाविष्णु भी जो है जिनकी श्वास जब निकलती है तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं श्वास के द्वारा, जब श्वास अंदर जाती है तो सब ब्रह्मांड उनके शरीर में चले जाते हैं और ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है। वो महाविष्णु सोचिए कितने महान है कि उनकी श्वास जब बाहर निकलती है और अंदर जाती है इतने में पूरी ब्रह्मा की पूरी आयु समाप्त हो जाती है। और ब्रह्मा की आयु कितनी है? 31,10,40,00,000,000 वर्ष, कितनी आयु, तो इतनी उनकी श्वास होती है। तो महाविष्णु श्वास बाहर निकाली और फिर अंदर ली, इतनी देर में ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। वो महाविष्णु तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ तक कि कृष्ण और महाविष्णु के भी कारण है। विष्णु और महान सही है कला विशेष हो, तो भी उनकी एक विशेष कला है, 16वीं कला है। वो महाविष्णु में कृष्ण की एक 16वीं कला है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ तक कि वे मतलब कृष्ण उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, ये समस्त अवतारों के उद्गम है। कृष्ण को अवतार मानना उचित नहीं है,
कृष्ण सब अवतारों के उद्गम है, कृष्ण से ही सब अवतार होते हैं, कृष्ण ही अवतार। ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमे नितिष्ठन नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु, कि राम आदि मूर्तियों में बहुत से अवतार उन्होंने धारण किए। कृष्णा स्वयं संभवत्, किंतु जहाँ कृष्ण की बात आती है तो किंतु आया, जितने अवतारों की बात है उसमें तो आया कि भाई ये अवतार हैं, जहाँ तक कृष्ण की बात आती है तो किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमात्मा, किंतु कृष्ण स्वयं भी कभी कभी परम पुरुष आते हैं। गोविंद मादि पुरुषम तम हम भजन, मैं आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी ये बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम है, इसकी पूर्ण व्याख्या पिछले अध्याय में की गई है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उनका कहना है कि उनका मोह दूर हो गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि वे कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानते, अभी तो उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं। मोह दो प्रकार का मोह है, एक तो मोह है अर्जुन का कि मेरे मित्र हैं और मेरे जैसे हैं, और दूसरा मोह है ये हमारे संबंधी हैं, ये भाई हैं, भतीजे हैं, मामा हैं, साले हैं, है? तो ये मोह, तो ये जो मोह है वो अर्जुन को युद्ध करने में बाधा डाल रहा है, और कृष्ण के प्रति जो मोह है कि मेरे मित्र हैं, तो ये बाधा नहीं डालता। लेकिन जब अर्जुन कृष्ण को समझे कि कृष्ण परम कारण है, सबके कारण है, तो उनका मोह दूर हुआ। कौन सा मोह दूर हुआ, कि हमारे ये भाई भतीजे साले जीजा, ये मोह दूर हुआ। तो प्रभु लिखते हैं अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुके हैं और उन्हें प्रसन्नता है कि उन्हें कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वे ये सोचते हैं कि भले ही वे कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान लें, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। तो अर्जुन को चिंता है, किस बात की चिंता है, कि कृष्ण ने अपने आप को जो बताया है वो मैं तो समझ पाया, लेकिन दूसरे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे लोग कितने अज्ञान में हैं। तो अर्जुन की चिंता है कि दूसरे लोगों को भी ये ज्ञान मिले, ये भक्त का स्वभाव है। अगर भक्त को जो है कुछ ज्ञान मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है, तो सोचता है सबको मिले, सब पाए ऐसी भक्ति। तो अर्जुन जो है, अर्जुन की ये चिंता है कि जैसा मैंने कृष्ण को समझा है वैसा दूसरे लोग भी समझे कृष्ण को, है ना। तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे, अर्जुन ने कहा कि मैंने तो मान लिया, दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वे सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन कि विराट रूप दिखलाएं, क्योंकि आगे चल करके और भी लोग कहेंगे कि हमने भी गीता पूरी याद कर ली है, और जैसे कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाई थी वैसे मैं अभी आपको गीता सुना देता हूं, तो मैं भी भगवान हूं, मैं भी तो मैं कृष्ण से कम थोड़े हूं। आगे चलकर बहुत से बदमाश लोग कहेंगे कि मैंने भी गीता पूरी याद कर ली है और कृष्ण गीता अर्जुन को सुनाई थी तो मैं भी सुना देता हूँ, तो मुझे भी भगवान मानो, है ना। तो फिर आपके पास ये प्रश्न उठेगा कि जैसे अर्जुन ने कहा था कि मुझे अपना विराट रूप दिखलाइए, तो आप भी अपना विराट रूप दिखलाइए, है ना। तो यहाँ पर फिर वो निरुत्तर हो जाएगा। तो अर्जुन की ये चिंता है, है ना। देखिए इसमें कितना गहरा भाव है अर्जुन का, कि अर्जुन इसलिए, अर्जुन को जरूरत नहीं है कि कृष्ण विराट रूप दिखाएं, अर्जुन तो मान गए, भगवान ने जो कुछ कहा अपने बारे में अर्जुन तो मान गए, लेकिन दूसरे लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग सोचेंगे कि अर्जुन तो मित्र हैं, तो अपने मित्र की बात को माना, है ना। तो इसलिए कोई व्यक्ति अपने मित्र को भगवान घोषित करेगा, है ना। तो इसलिए दूसरे लोग नहीं मानेंगे कृष्ण को भगवान। अतः ये वस्तुतः जब कोई अर्जुन की ही तरह कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करता है तो वो डर जाता है, किंतु कृष्ण इतने दयालु हैं कि स्वरूप को दिखाने के तुरंत बाद भी अपना मूल स्वरूप धारण कर लेते हैं। अर्जुन डर गए, भये न चा परम व्यथितम मनो में, जब अर्जुन ने कहा भय से मेरा मन बहुत व्यथित हो रहा है ना, तो भगवान कहते तदेव मे रूपमिदम प्रवश्य, अब मेरा तुम यही रूप देखो, है ना। तो भगवान ने अपना विराट रूप जो है समेट लिया। अर्जुन कृष्ण के इस कथन को बार बार स्वीकार करते हैं कि वे उनके लाभ के लिए ही सब कुछ बता रहे हैं। कृष्ण ने जो कुछ भी बताया दसवें अध्याय में अपनी विभूतियां बताई और नवें अध्याय में भी अपना प्रभाव बताया है ना, तो अर्जुन समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने बताया। कोई सोचेगा कि कृष्ण अपनी ईश्वरता स्थापित करने के लिए बता रहे हैं है ना, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि आप नहीं बताते मुझे है कि आप कितने महिमावान हैं, आप कितने महान हैं, आप तो नहीं बताते हैं, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने मुझे बताया है ना। तो ये बात समझना है। कोई व्यक्ति सोचेगा कि नहीं कृष्ण जो है अपने को दिखाना चाहते हैं कि वे भगवान हैं इसलिए वो बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन हमें समझना है। अर्जुन क्या समझ रहे हैं, मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आपने बताया है ना। दसवें अध्याय में भगवान ने कहा बक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे हित की कामना से मैं बताऊंगा। तो कृष्ण की जो महिमा है इसको सुन करके हम कृष्ण की शरण लेंगे तो इसमें हमारा ही लाभ है। कृष्ण को कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उनकी शरण लें, कृष्ण का कोई फायदा नहीं है, लेकिन हमारा ही लाभ है कि हम कृष्ण की शरण लें। इसलिए कृष्ण गीता में जो कहते हैं कि मेरे शरण में आओ तो उसमें हमारा लाभ है और हमारे ऊपर उनकी कृपा है, इतनी कृपा है कि हम जन्म जन्म से जो कष्ट भोग रहे हैं वो कृष्ण कह रहे हैं कि अब छूटो इन सब कष्टों से और मेरे शरण में आओ है ना। तो कृपा है कृष्ण की, ये समझना है ना। तो अर्जुन इस बात को स्वीकार करते हैं, बार बार स्वीकार करते हैं। अतः अर्जुन इसे स्वीकार करते हैं कि ये सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो चुका है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है और परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। तो अर्जुन इस बात को समझ गए। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। तो यहाँ पर समझना क्या है कि हमें भगवान की कृपा देखनी चाहिए। मुख्य बात यह है हमें भगवान की कृपा देखनी चाहिए और कृपा देखने का अगर स्वभाव हमारा बन जाए है कि भगवान की कृपा है। एक व्यक्ति अगर भगवान की कृपा मानता है किसी भी घटना में भगवान की कृपा मानता है तो फिर भगवान की उसको कृपा और मिलती है। अभी हम जो पुस्तक लेके आए हैं तो ये श्री कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार ये पुस्तक है जो कि आपको हम देने के लिए आए हैं। तो इसमें भगवान ने कैसी लीलाएं करी हैं हमारे साथ में और कैसे अपने कृपा के संकेत दिए हैं वो बड़ी अद्भुत घटना है जो पहले कभी नहीं सुनी गई हैं, ऐसी घटनाएं हैं ये। और ये श्लोक भी मुझे मिला तो ये भी कृष्ण की ही कृपा से मिला ये श्लोक भी मुझे मिला है तो कृष्ण की कृपा से मिला। मैंने कुछ नहीं सोचा था, दामोदर प्रिया ने मुझे कहा कि दसवां अध्याय पूरा हो गया, ग्यारहवां अध्याय शुरू करना है। मैंने कहा ठीक है शुरू कर देंगे, और समय मैंने नहीं सोचा था कि कृष्ण की कृपा से ही शुरू होगा श्लोक। और दूसरा शब्द है यह त्वयोक्तम वचस्तेन, आपके द्वारा जो वचन कहा गया, तो पहले भी हमने किताबें लिखी श्री भगवान ने कहा है तो त्वया उक्तम वचः और श्री भगवान ने कहा, ये भी जो है शब्द इसी श्लोक में मिले हैं। तो मेरी सात किताबें वो भी छप चुकी हैं श्री भगवान ने कहा, तो उनका भी जो है ये नाम यहाँ पर मिल रहा है। और मेरे ऊपर कृपा करने के लिए अर्जुन ने जो कहा है तो वो भी जो है हमारी किताब अभी जो हाल में छपी है तो उसका संकेत मिल रहा है इस श्लोक में। तो भगवान की मतलब इसमें कितनी कृपा है कि कैसा घटना का योग बना है। तो भागवत में बताया गया है कि तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में आपकी कृपा हमेशा देखता है, उसने आदत बना ली है भगवान की कृपा देखने की, मतलब उस वो जो है हर बात का अर्थ इसी प्रकार से निकालता है कि नहीं इसमें भी भगवान की कोई कृपा है। जैसे सुदामा जी थे तो सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने से कृष्ण के पास गए द्वारका में, तो पत्नी ने क्या कहा, वो पत्नी से बोले कि मैं कृष्ण से नहीं मांगूंगा, ये मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि मैं उनसे मांगने के लिए जाऊं। तो पत्नी ने कहा कि नहीं आप मांगने के लिए मत जाइए, उनसे मिलने के लिए जाइए, वो बिना मांगे दे देंगे। तो सुदामा जी का ठीक है बिना मांगे देंगे तो ठीक है, मैं मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। मित्रता में जो है मैं कलंक नहीं लगाऊंगा। तो सुदामा जी गए और इतना कृष्ण ने प्रेम किया, इतना स्वागत सम्मान पूजा सब कुछ की और घर में रखा। और जब गए बाहर तो कृष्ण ने विदाई भी दी लेकिन कुछ दिया नहीं। तो सुदामा जी ये भी सोच सकते थे कि कृष्ण जो है कितने कंजूस हैं, मतलब उल्टा भी सोच सकते, उल्टा सोचने का मौका था। लेकिन भक्त का स्वभाव क्या होता है, वो हमेशा कृपा ही देखता है। तो अपनी बुद्धि से उन्होंने कुछ अंदाजा लगाया कि यहाँ भी कृपा है तो क्या कृपा हो सकती है। तो उन्होंने सोचा कि यही कृपा हो सकती है कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया कि मैं उनको भूल जाऊंगा, उनका भजन नहीं करूंगा, तो इसलिए उन्होंने मुझे नहीं दिया। अब भगवान ने तो इतना दिया है कि कुछ सोच भी नहीं सकता, सुदामा जी को पता भी नहीं कितना दिया है भगवान ने, लेकिन नहीं दिया, उनको यही पता चला कि कुछ नहीं दिया, तो इसमें भी उन्होंने कृपा दी। तो कृपा देखना एक का एक तरीका होता है कि आप भगवान की कृपा देखी कि भगवान की कृपा है। अगर कुछ उल्टी भी घटना हो जाती है आपके साथ में, तो उसमें भी अगर आप दिमाग लगाएं कि हाँ इसमें भी कृपा हो सकती है, तो आपको कृपा दिखाई देगी। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर में जाता है भगवान के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करके निकले बाहर और सीढ़ी से पैर फिसल गया और पैर टूट गया, है ना। तो वो ऐसे भी सोच सकता है कि देखो मैं मंदिर गया और देखो उल्टा परिणाम हुआ, मतलब बेकार, ये जो है भगवान का कितना खराब स्वभाव है, हाँ कि मेरा पैर टूट गया क्योंकि मैं मंदिर गया था। तो भगवान जो है बड़े कठोर हैं, उनके अंदर कुछ कृपा नहीं है, दया नहीं है। लेकिन जो भक्त है वो ऐसे भी सोचेगा कि मैं मंदिर गया और मेरा पैर टूटा, ये भगवान की बड़ी कृपा है क्योंकि मेरे साथ और भी बड़ी दुर्घटना होनी थी तो पैर ही टूटा है। तो ऐसे भी सोचने का तरीका है। तो अगर हम इस प्रकार से सोचते हैं तो तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणु, तो भगवान की कृपा को जो है हमेशा देखना, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो भी देखने की कोशिश करें, मानते हैं इस तरह से। और फिर अगर किसी भी प्रकार से नहीं दिखाई दे रही, नहीं मेरा तो कुछ भी दोष नहीं है और मेरे साथ ऐसा उल्टा हो रहा है, बहुत उल्टा हो रहा है, तो फिर क्या करना है, भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, मेरा पिछले जन्म का कुछ कर्म था ऐसा, तो उसमें भगवान का दोष ना मान करके अपना दोष माने कि जो कुछ भी उल्टा हो रहा है मेरे साथ में, दुर्घटना हो रही है, तो मेरे अपने कर्म है। तो भगवान में जो है दोष ना देखना, भगवान में गुण देखना हमेशा, और अपने अंदर गुण ना देखना, अपने अंदर दोष देखना हमेशा। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से अगर जीवित रहता है, भुंजान ए बात में कदम विपाकम हृदवाग वपो फिर विधन नमस्ते, और हृदय वाणी और शरीर से भगवान को नमस्कार ही करता है, जीवे दे जो मुक्ति प्रदेश हताय भात, अगर जीवन इस प्रकार से उसका अगर बीते तो जीवन के अंत में मुक्ति का जो पद है उसको उसी प्रकार से मिल जाता है जैसे पुत्र को अपने पिता की संपत्ति मिल जाती बिना मांगे। पुत्र का जो है केवल इतने काम है कि जीवित रहे और पिता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे, बस, तो उसको पिता की संपत्ति का अधिकार मिल जाता है, केवल जीवित रहना है, पुत्र की तरह रहना है। तो इसी प्रकार से अगर हम जीवित रहते हैं पूरा जीवन भर, कृष्ण की कृपा देखें हमेशा, अपने दोष, कुछ उल्टा हो रहा है तो मेरे ही दोष हैं, और कुछ अच्छा हो रहा है तो मेरा गुण नहीं है, ये कृष्ण की कृपा है, तो अपना गुण नहीं देखना। लेकिन जो जो नास्तिक है वो अपना गुण देखता है, कोई अच्छा होता है तो मेरा गुण है, इसे भगवान की क्या कृपा है, तो मेरा गुण है, और कुछ उल्टा होता है तो इनका दोष, इनका दोष, इनका दोष, सबका दोष और भगवान का दोष, मेरा क्या दोष है। तो इस प्रकार से भी जो है देखने की आदत कोई बनाता है, लेकिन इसमें अपना नुकसान है। अगर आप इस प्रकार की आदत बनाते हैं कि अपना दोष नहीं देखना है, बाकी सबका दोष देखना है, अपना दोष नहीं देखना और भगवान का भी दोष देखना, तो इसमें अपना नुकसान है। क्यों? उससे फिर आपको और भगवान के दोष दिखाई देंगे, तो भगवान आपको फिर दोषी दोष दिखाएंगे, तो मेरे दोष देखना चाहते हो तो दोष भी देखो, उनका भी अंत ही नहीं। और अगर भगवान के गुण आप देखना चाहते हो तो भगवान अपने गुण दिखाएंगे, इतने गुण हैं कि उनका अंत नहीं, तो कोई अंत ही नहीं है, भगवान के गुणों का भी अंत नहीं है ना। तो अब आपकी ये इच्छा है, आपका चुनाव है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या गुण, गुण देखो अपना फायदा है, भगवान की कृपा देखो तो अपना फायदा है, कृपा देखोगे तो कृपा ही कृपा दिखाई देगी, और इतनी कृपा दिखाई देगी आप सोच भी नहीं सकते कितनी कृपा, कितनी कृपा। तो ये तरीका है, हमें भगवान की कृपा देखना है। तो इस तरह से अर्जुन ने जो इस श्लोक कहा है, इसमें हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है, बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है ना। और वो शिक्षा क्या है कि भगवान की कृपा देखना है। कोई भी भगवान का जो चरित्र है और भगवान के द्वारा अगर कुछ घटना हुई है तो सब भगवान की कृपा देखना है ना। तो आज के श्लोक का ये संदेश है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं, ये विषय बड़ा रोचक है। तो आप लोगों की ओर से कोई है प्रश्न, कोई चर्चा, मैं प्रश्न करूं, ठीक है मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा आपको हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोग भक्ति छोड़ देते हैं, कुछ समस्या आती है, दुख आता है तो वो छोड़ देते हैं, है ना। किसी व्यक्ति ने 1,00,000 रुपए का दान दिया और उसके लड़के की मृत्यु हो गई, तो वो क्या सोचता है, देखो मैंने मंदिर में 1,00,000 रुपए का दान किया और मेरे लड़का मर गया, है ना, तो इसका मतलब मंदिर को दान नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से लोग सोचते हैं। तो इसके लिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। रोज भगवद्गीता का कम से कम 1 श्लोक पढ़िए, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो भगवद्गीता का रोज 1 श्लोक पढ़िए। और कौन सी भगवद्गीता, भगवद्गीता यथारूप, है ना। तो इसमें प्रभुपाद का जो तात्पर्य है उसके साथ श्लोक पढ़िए, उसका शब्दार्थ पढ़िए, उसका अनुवाद पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए कम से कम 1, और ज़्यादा पढ़ने वाला अलग बात। और ऐसा नहीं कि एक बार गीता पूरी हो गई तो आपने बंद कर दी, ये लगातार। और प्रभुपाद की जितनी पुस्तकें हैं आप जो है वो पढ़ते हैं तो आपको सीधे कृष्ण का संग प्राप्त होता है, भगवान का संग सीधे प्राप्त होता है। तो इतने भगवान जो है सुलभ हैं, जबकि भगवान बहुत दुर्लभ हैं, ब्रह्मा शिव के लिए भी दुर्लभ हैं भगवान। लेकिन अगर हम प्रभुपाद की पुस्तकों का संग करते हैं और गीता के श्लोक प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं तो भगवान आपके बहुत निकट हैं। और इस प्रकार से अगर आप भगवान को समझने का एक तरीका अपना लेते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता लेकिन तो भी इतना समझ लें कि भगवान तो कृपालु हैं। एक व्यक्ति था, गीता का रोज पूरा पाठ करता था, पूरा उसके गुरु की आज्ञा थी कि रोज गीता का पूरा पाठ 18 अध्याय पाठ करना, तो 18 अध्याय पाठ करता था। लेकिन वो संस्कृत नहीं जानता था तो अशुद्ध पाठ भी होता था और अर्थ उसको समझ में आते नहीं था, लेकिन पाठ करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते थे और कंठ गदगद, आवाज गदगद हो रही है और कंपन हो रहा है शरीर। तो श्री चैतन्य ने जब देखा तो उससे पूछा कि गीता की किस अर्थ का जो है ध्यान करके, विचार करके आपको इतना आनंद आ रहा है। तो बोला कि मैं तो गीता नहीं समझ पाता हूँ क्योंकि मैं संस्कृत नहीं जानता हूँ, मेरे गुरु ने आदेश दिया है मैं पूरी गीता पाठ करूँ तो मैं रोज पढ़ता हूँ, मुझे तो केवल इतनी समझ में आता है कि कृष्ण कितने दयालु हैं कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं जबकि असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो कितने दयालु हैं कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो इसी बात को सोच करके ही मेरे आंखों से आंसू बहते हैं और कंपन होता है शरीर में, रोमांच हो रहा है। तो भगवान श्री चैतन्य ने बोले गीता का असली अर्थ तो तुम ही जानते हो, और श्री चैतन्य ने उसको अपने हृदय से लगा लिया तो वो समझ गया कि वही कृष्ण है जो भगवद गीता अर्जुन को सुना रहे हैं, वही कृष्ण मुझे अपने हृदय से लगा रहे हैं। उसको जो है तत्व मालूम हो गया, कृष्ण का तत्व उसको मालूम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि गीता को समझने का जो तरीका है, कृष्ण को समझने का तरीका यही है कि हम उनकी कृपा देखें। इसमें आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। भक्ति आमाओं में जाना थी यावान यस्यास्मि तत्त्वतः, तो भक्ति के द्वारा कोई व्यक्ति जान लेता है कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ। तो तत्व से जानने का मतलब यही है, उनकी कृपा आपको और दिखाई देगी, और कृपा दिखाई देगी। तो यही तत्व है जो कि हमें समझना है और शुरुआत भी करनी इसी से, और इसी में ही समाप्ति होगी। समाप्त तो होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा का अंत नहीं है कि आप सोचें कि भाई अब इतनी कृपा है और मुझे मिल गई अब बस, उनकी कृपा का कोई अंत ही नहीं है। कृपा का समुद्र, भगवान कृपा के समुद्र है, जैसे समुद्र की थाह आप नहीं पा सकते, ऐसे तो जितनी आप गहराई में जाते उतनी गहराई मिलती जाती है भगवान की कृपा की। तो यही भक्ति का जीवन है, ये कभी समाप्त नहीं होता, कभी भी अंत नहीं आता। तो भगवान, आप सोचें भगवान की इतनी कृपा मिल गई अब तो जो है यहाँ से सप्लाई अब बंद है, तो कभी नहीं, ये कभी नहीं होता, है ना। तो ये भक्त का जीवन है, और इसी में ही भक्त को नया नया रस मिलता है। यशमन स्थित न दुखे ने गुरु ना भी विचाले थे, इस विचार में अगर स्थित हो जाए तो बड़े से बड़े दुख से भी वो विचलित नहीं होता। तो इनका जो प्रश्न है ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, कोई भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, ये भौतिक संसार ऐसा ही है, और जो कुछ हो रहा है वो कम ही हो रहा है। अगर आप देखें इस संसार में कितने कष्ट हैं, असीमित कष्ट हैं। आप तो बहुत सुरक्षित हैं, आप तो, आपके पास तो कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई देगा कि जितना आपको मिल रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा और करोड़ों गुना ज्यादा कष्ट है। आपको मनुष्य का जीवन दिया है तो भी बहुत बड़ी कृपा है, आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलता तो बहुत बड़ी कृपा है। तो इस तरह से हमें कृपा भगवान की मांगना चाहिए और भगवान की कृपा देखना चाहिए, ठीक है ना। तो यहीं पर हम आज का प्रवचन समाप्त कर रहे हैं, और अब दामोदर प्रिया प्रभु कुछ बोलेंगे और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कुछ बोलेंगे।